हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत महाराज के आश्रम में हम बैठे हैं और आगे जो जगन्नाथ भगवान की कई कहानियाँ थी जो हम बता नहीं पाएगा आपको, वो बताने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 0। अभी खिचड़ी की बात आई ना, तो खिचड़ी के गाने सुनाते आपको। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ भगवान बड़े दयालु भगवान हैं, बड़े कृपालु भगवान हैं। उसके पहले आप बताते हैं कि यहाँ जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है राधा नयन मणि जू। नयन मणि का मतलब है द ज्वेल ऑफ द हार्ट ऑफ राधा रानी, और जीयू मतलब हम जो बोलते हैं ना जी, प्रकाश जी, प्रेमानंद जी, वैसे जीयू बोलते हैं उड़िया में और बंगाली में। तो नयन मणि जीयू मतलब जो राधा के नयनों के तारे हैं। और जगन्नाथ जी का विग्रह भी यहाँ पर है, और यहाँ पर ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विग्रह है, उनकी पूजा होती है। तो जगन्नाथ भगवान बड़े दयालु हैं, वो कभी किसी का भेदभाव नहीं करते। तो एक बार यवन कुल की जन्मी हुई एक माता जी, बड़ी बूढ़ी थी वो, और चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर लेके आती है जगन्नाथ के लिए भोग लगाने के लिए। मंदिर में प्रवेश तो नहीं है उनके लिए, तो बाहर से आवाज देती है ले लो ले लो, तो सब पंडा लोग उनको भगा देते हैं। अस्पृश्य हो तो तुच्छ हो, यवन कुल की हो, धड़ो यहाँ से भागो। तो बेचारी बड़ी दुखी होकर घर चले जाते हैं, और गाँव के जगन्नाथपुरी के सीमा के पास उनका झोपड़ी है, वहाँ जाके रोती है वो। तो उसमें भोग लगने का समय है जगन्नाथ जी का, पंडालों सब हंडा वंडा भर के लेके जाते हैं अंदर, घंटी बजाते हैं, तुलसी डालते हैं और पर्दा बंद कर देते हैं। ये जगन्नाथ जी अंतराय में है ना, वो देखते हैं कि मेरा भक्त जो है मुझे कुछ लेके आया था, पंडालों ने भगा दिया उनको। तो जैसे पर्दा बंद हो गया, जगन्नाथ जी अंदर से गायब हो गए और एक बालक बनकर, सुंदर नीलमणि जैसे बालक बनकर वो गाँव के बाहर झोपड़ी में जाते हैं। और उसके झोपड़ी में पहुँचते हैं, बोले माता बहुत भूख लग रही है, कुछ है खाने को? माता कहते गरम गरम खिचड़ी बनी हुई है, खा सकते हो तो खाओ। दोनों हाथ से खिचड़ी खाते हैं, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से भर भर के खाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी घंटी बजती है ना, उसका भी समय होता है 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। उसके बाद घंटी फिर से बजती है, पर्दा फिर से खुलता है, वापस आके वहाँ खड़ा है ना ड्यूटी पर, इज़ ऑन ड्यूटी ओवर देयर। तो उनको 20 मिनट के अंदर खाना भी है और भाग के पहुँचना भी है, दोनों हाथ से खा रहे हैं और वर्षा वहाँ घंटी बजती है। तो ऐसे ही झूठे हाथ झूठे मुंह लेकर भागते हैं भगवान ऐसे फिर वापस। जो पर्दा खुलता है तो देखते हैं पुजारी जी उसके हाथ में खिचड़ी लगी हुई है, मुंह में खिचड़ी लगी हुई है, कहीं भी व्यंजन में कहीं खिचड़ी नहीं है। तो ये क्या रहस्य है? सब जगह पूछते हैं, पूछताछ करते हैं कि जगन्नाथ को खिचड़ी किसने खिलाया। पूछते सबको पूछते थकते हैं कि कोई ना बोलते जाते हैं। आखिर में वो बुढ़िया के खिचड़ी में झोपड़ी में आते हैं। वही झोपड़ी में कौन आएगा, जगन्नाथ जी यहाँ पर क्यों आएंगे? लेकिन तो पूछते हैं, उन्होंने कहा था कि नीला बालक सुंदर आया था, बहुत भूखा था बेचारा, मैंने उसको खिचड़ी गरम गरम खिला दिया। कहाँ है खिचड़ी? वो दिखाते हैं, यही खिचड़ी है वो जो भगवान के हाथ को लगी थी। उस दिन से फिर वो औरत को उन्होंने बड़े सम्मान से बुलाया और कहा कि तुम खिचड़ी बनाओ और रोज़ तुम्हारी खिचड़ी भगवान को अर्पण करेंगे। उसके जीवन काल तक वो रोज़ भगवान को खिचड़ी बनाकर अर्पण करती रही, भगवान उसको ग्रहण करते रहे। इसलिए आज भी उसके स्मृति में जगन्नाथ के, हरे कृष्णा, प्लीज टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हरि बोल। तो आज भी उसकी स्मृति में उसके जीवन काल तक जगन्नाथ को उसके हाथ से ही खिचड़ी लगाई गई। जब उसका शरीर छूट गया तो उसके बाद में उसके स्मृति में आज भी जगन्नाथ में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और अन्न मंडप में 10,000 लोगों को हर रोज़ खिचड़ी प्रसाद फ्री में बांटते उसी माता की याद में। मैंने आपको कहा था कि राजा पुरुषोत्तम देव थे, जो राजा प्रताप जो के पिताजी हैं। मैंने कहा ना कल आपको कि वो जो यहाँ से यहाँ के वो गजराज थे, गजपति राजा पुरुषोत्तम देव आक्रमण करने जा रहे थे कांचीपुर में, कांची राज्य में। तो उनको आवाज़ आती है वहाँ से, है ना, कि मेरी सेवा नहीं हुई बहुत दिन से, आओ मेरी सेवा करो, मेरी सेवा का व्यवस्था करो। राजा पहुँचते अलारनाथ में, बोलते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था करूँगा, मैं युद्ध करके आऊँगा और आपकी व्यवस्था करूँगा। युद्ध जीत के आते हैं और फिर जगन्नाथ मंदिर के मतलब शासन की ओर से अलारनाथ की भी सेवा का कार्यक्रम सेट कर देते हैं। तो वही पुरुषोत्तम देव की कहानी ऐसी है कि एक बार वो युद्ध करने चलते हैं और दक्षिण देश में आके युद्ध करते हैं, बहुत जोश से युद्ध करते हैं, लेकिन उस युद्ध में हार जाते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको। तब वो सोचते हैं कि कैसे मैं हार गया। तो रास्ते में जब हार के आ रहे हैं तो उनके एक पुरोहित हैं, उनके घर वहाँ पहुँचते हैं, उन सलाह करते हैं कैसे ऐसे हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या कारण हो सकता है कि मैं हार गया। उन्होंने कहा कि आपने जगन्नाथ से आज्ञा नहीं ली, बोले जाने के पहले प्लीज़ ब्लेस मी, आई टेक योर ऑर्डर एंड गो, आप भूल गए थे उसको, इसलिए आप युद्ध हार गए। कोई चिंता मत करो, पुनः तैयारी करो, इस बार जगन्नाथ के पास जाओ, उनका आशीर्वाद लो और फिर जाओ। तो वो पुरोहित का कहना मानते हैं, फिर दोबारा जाते हैं और आराम के बाद में फिर सेना को इकट्ठा करते हैं और आक्रमण करने के पहले जाकर मिलते हैं भगवान को, जगन्नाथ को, और जगन्नाथ से आज्ञा लेते हैं बहुत रो रो कर, कि मैंने आपसे अपराध किया, आपने आज्ञा नहीं लिया लास्ट टाइम, इस बार आप कृपा करें। जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं, उनसे वो कहते हैं चिंता मत करना, इस बार मैं और मेरे भैया जी दाऊ जी महाराज, बलदेव जी महाराज आपके साथ चलेंगे और आपके पक्ष में युद्ध करेंगे। राजा का उत्साह बहुत विघटित होता है, अरे वाह क्या बात है, इस बार तो हमारे भगवान भी चलेंगे हमारे साथ। तो चलते हैं सेना लेकर, लेकिन मन में और संकोच है, उनके संशय मन में है, क्या सच में आएंगे, क्या आएंगे तो कहाँ से आएंगे, कहाँ है अभी, आगे के पीछे हैं, बीच में है कि किधर है, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, लेकिन चल रहे हैं, भगवान ने कहा है तो हो सकता है आएंगे। बहुत देर तक सफ़र करते हैं सैन्य को लेकर, तो उनको आगे जाकर एक बुढ़ी औरत मिलती है। वो जो बुढ़ी औरत है वो ऐसे छाछ बेचने को वहाँ बैठी रहती है, छाछ बेचने को, छाछ का मटका लेकर बैठी हुई है। जब ये सेना को देखते हैं, अभी पुराने ज़माने में जो है ना, जो होते ना सेनापति, वो सबसे पहले चलते हैं, द लीडर ऑफ द आर्मी इज इन द फ्रंट, नॉट इन नॉट बिहाइंड द होल आर्मी, आफ्टर द होल आर्मी डाइज देन ही विल रन अवे फ्रॉम बिहाइंड, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो राजा पुरुषोत्तम देव है वो जा रहे हैं, तो उनको रोकती है, राजा महाराज रुको रुको रुको, बोला क्या बात है, बोला आपके दो सैनिक यहाँ से आगे गए थे और वो बहुत प्यासे थे, तो मेरे पास रुक गए, मैंने कहा छाछ मांगा उन्होंने, तो मैंने बहुत खूब छाछ पिलाया उनको, फिर पैसे मांगे मैंने उनसे, बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, मारा राजा मुझे से आ रहे हैं उनसे पैसे ले लेना, नहीं 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 उतना देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हाथ का जो कंगन है वो निकाल के दिया, मतलब रखो उसको, तो राजा पीछे से आएंगे तो उनको लौटा देना और उसके बदले मेरा पैसा ले लेना छाछ का। तो जगन्नाथ बलदेव जो है वो कहते हैं कौन थे वो, कहाँ कैसे थे वो, कहते हैं एक काले घोड़े पर गोरा घुड़सवार था और एक गोरे घोड़े पर काला घुड़सवार था। मतलब कौन है, गोरे घोड़े पर जगन्नाथ जी और काले घोड़े पर बलदेव जी महाराज, शस्त्र से लेकर बोले आगे गए आपके वो, और प्यास लगी तो भगवान ने उनको अपना कंगन निकाल के दे दिया। तो वो कंगन जब राजा ने देखा तो पहचान दिया, नहीं तो जगन्नाथ जी का कंगन है, मतलब इज अ प्रूफ दैट जगन्नाथ जी ऑलरेडी इज गॉन। जब वहाँ पहुँचते हैं जिस राज्य पर आक्रमण करना है, वहाँ पर ऑलरेडी राजा इज डिफीटेड कम्प्लीटली, फुल्ली वॉर इज ऑलरेडी ओवर बिफोर ही रीचिंग देयर। जगन्नाथ बलदेव जाकर सबको ख़त्म करके वापस चले जाते हैं, बड़े धूमधाम से लौट कर आते हैं। और ऐसे ही एक कथा है पुरुषोत्तम राजा की, इनका विवाह होने के पहले वो जाते हैं एक दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए, तो उनका पराक्रम देखकर वो राजा जो है वो एक्सेप्ट कर लेते, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू फाइट विथ यू, वी आर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट कर लेते हमने डिफीट। और डिफीट होने के पश्चात उनका गौरव के लिए अपनी कन्या जो है उसका विवाह और इसके साथ में तय करते हैं, राजा पुरुषोत्तम देव के साथ में। तो राजा जो है मतलब वो कहते हैं कि अभी जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा का महोत्सव आने वाला है, तो उसके पश्चात विवाह का मुहूर्त बनाएंगे। और बात पक्की करके राजा जो है जगन्नाथपुरी का राजा है ना वो, तो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा महोत्सव उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत चले आते हैं। रथ यात्रा में क्या होता है वो मैं आपको कल बताना भूल गया, आपको एक स्टेप बताना भूल गया। जब भगवान पहंडी विजय करके मंदिर से बाहर निकलते हैं, पहले सुभद्रा जी, फिर चक्र, फिर बलदेव जी और लास्ट में जगन्नाथ जी जब चढ़ते हैं, तो पहंडी विजय कहते हैं उस उत्सव को। पहंडी विजय के बाद में जो वर्तमान गजराज है राजा, आज के तारीख में दिव्य सिंह देव राजा है, उनको हम हर साल मिलते हैं यहाँ पर। तो पुरुषोत्तम देव राजा जो है, जो भी राजा है, उसको आकर झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ये कथा में थोड़ा बाद में आपको बताऊँगा, ये लंबी कथा है, लेकिन यही कथा में संपर्क इसका ऐसा है। तो रथ यात्रा शुरू होने के पहले राजा आकर रथ के सामने सोने की झाड़ू लेकर रास्ता साफ करता है, उसके बाद में रथ यात्रा आरंभ होती है। तो जब ये खबर पहुंचती है उसके होने वाले ससुराल में, अरे राजा ने तो झाड़ू लगाया रास्ते पर, आई विल नॉट मैरी माई डॉटर टू विद दिस पीपल, मैं एक भंगी के साथ में मेरी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए वो, क्योंकि क्या होता है ना, अभी सगाई हो गई है, संबंध हो गया है, तो उस परिवार से एक मंत्री आता है राजा के प्रतिनिधि के रूप में रथ यात्रा के उत्सव में, और जो मंत्री जो है राजा का गौरव करने के बदले में जाके बताता है कि तुम्हारा दामाद जो होने वाला है वो झाड़ू लगा रहा था। तो राजा बिकम वेरी एंग्री, आई विल नॉट मैरी माई डॉटर विद अ स्वीपर, तो सगाई कैंसिल हो जाती और खबर पहुंचती है, वी आर वेरी सॉरी, वी विल नॉट लाइक आवर डॉटर टू गेट मैरिड विद अ स्वीपर, विल फाइंड अनदर सुटेबल कैंडिडेट फॉर हर। तो राजा पुरुषोत्तम को उसको अपमान लगता है, बोलते हैं सभी बिग डिफीट, तो ही गेट्स एंग्री एंड एक्चुअली आई टोल्ड अ रॉन्ग स्टोरी टू यू, सॉरी, दिस इज द स्टोरी एक्चुअली। दिस टाइम व्हेन ही गेट्स एंग्री देन ही गोज डाउन एंड ही गेट्स डिफीटेड एंड नेक्स्ट टाइम ही टेक्स परमिशन एंड ही गोज एंड ही विंस द वॉर। उस समय राजा को वो अरेस्ट कर लेते हैं और राजा की कन्या जो है उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं, और राजा बोलता है ये जो कन्या है इसको अपने राज में ले चलो और कोई अच्छा भंगी देखकर उसका शादी कर देना। क्योंकि तो उसके पिताजी ने कहा था कि भंगी से शादी नहीं करेंगे, इसलिए इस बार हमारी इच्छा से अच्छा भंगी देखकर उसका विवाह हम अपने हाथों से कराएंगे। और लेके आता है और अपने चीफ मिनिस्टर को कहता है, मुख्यमंत्री जी आपका काम ही या आपका ड्यूटी है कि इसको अच्छे भंगी के साथ में विवाह करना है। तो एक साल बीतता है ना भैया, रथ यात्रा होने के बाद में एक साल बीतता है, अगली रथ यात्रा आती है। अगली रथ यात्रा में क्या होता है, अगेन द किंग इज स्वीपिंग द फ्लोर, किंग इज स्वीपिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ द चैरियट। तो उस समय वो प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है, उसी कन्या को दोबारा लेके आता है और कहता है द बेस्ट भंगी इन द होल कंट्री इज राजा पुरुषोत्तम देव, इसलिए टुडे एज पर हिज ऑर्डर आई एम ऑफरिंग दिस डॉटर ऑफ साउथ इंडिया टू दिस बेस्ट भंगी ऑफ द कंट्री। फिर राजा उसको स्वीकार कर लेता है, उसका विवाह हो जाता है और उसी के पुत्र के रूप में राजा प्रताप रुद्र का जन्म होता है। और ये महान राजा जो है प्रताप रुद्र जो है, चैतन्य महाप्रभु के समय पर उसका जन्म है यहाँ पर। तो बात बताना क्या भूल गया था आपको कल मैं, कि राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु को मिलने की बहुत इच्छा थी और महाप्रभु संन्यास लेकर खड़े थे तो मना कर रहे थे बार बार, और राजा हर तरफ से महाप्रभु को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रामानंद राय को तनख्वाह भी दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी किया भक्तों की, उनके लिए काशी मिश्रा से बात करके गंभीरा में रहने की व्यवस्था किया, मदाधर पंडित को भी रहने का व्यवस्था किया, हरिदास ठाकुर को भी रहने का व्यवस्था का सहायता उन्होंने किया, महाप्रभु ने सबका किया, लेकिन उनका अरेंजमेंट सब राजा के अधिकार में हुआ। तो सार्वभौम मुझे बता रहे हैं आप अपना प्रयत्न प्रार्थना जारी रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पर महाप्रभु जी कृपा करेंगे। तो उस दिन रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, अपने सात पार्टियों को लेकर खड़े हैं, सात मंडली है उनकी, सात भक्तों भक्त उनके नेतृत्व में है, गाने वाले सात भक्त जो है मृदंग वाले, सात भक्त करताल वाले, और हर ग्रुप में नाचने वाले मुख्य नर्तक जो है, ऐसे पांच पांच भक्त ऐसे महाप्रभु जी ग्रुप बनाते हैं, सात ग्रुप। और उन सब ग्रुप के सामने रथ यात्रा आरंभ होने के पहले राजा प्रताप रुद्र आंखों में आंसू लेकर रास्ते में झाड़ू लगाता है और क्या सोच रहा है मन में, कि मुझे जन्म भर भंगी रहना अच्छा है, क्योंकि अगर राजा बनकर मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है तो मुझे राजपद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भंगी बनकर रहूँगा तो हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु, मैं अभी राजा नहीं हुए, देख कर मुझे मिल सकते हैं। वो क्या मना कर रहे हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न है तो धन दौलत के अंदर रहता है उसको मैं नहीं मिलूंगा, तो मैं ये राज्य धन दौलत अधिकार सब त्यागना चाहता हूँ, ये सोचकर झाड़ू लगा रहे। तो महाप्रभु जी अंतर्यामी है, जानते हैं सब कुछ, बड़े खुश हो जाते हैं, फिर भी उस पर कृपा नहीं करते। और फिर पहली कृपा राजा के ऊपर ऐसी होती है कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन आरंभ करने का आदेश देते रथ यात्रा के सामने, और सबके साथ सात ग्रुप के अंदर सात रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बिकम सेवन चैतन्य महाप्रभु, और वो हर एक ग्रुप में डांस करते हैं। जैसे रास में हुआ था, हर गोपी को लग रहा था कि वो केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसी तरह से हर ग्रुप को लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं। तो देवराल इमर्स्ड, महाप्रभु जितना नाच कर रहे थे इतना भाव विभोर होकर कि उनकी आँखों से पिचकारी की तरह अश्रु प्रवाह हो रहा था, लाइक अ पिचकारी। सारे ग्रुप में जितने लोग थे वो उनके अश्रुओं से धारा से भीग गए, उनके प्रेम अश्रु उस धारा से, और किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि महाप्रभु जी कहाँ नाच रहे हैं। जो जो जिस ग्रुप में था उनको लग रहा था कि हमारे ग्रुप में ही है और बाहर कहीं नहीं है। लेकिन दो ही व्यक्ति थे, एक स्वरूप दामोदर जो ललिता जी के अवतार हैं और राजा प्रताप रुद्र, ये अपनी आँखों से एक ही साथ देख रहे थे कि सात ग्रुप में सात महाप्रभु एक साथ नाच कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर जी देख रहे हैं कि प्रताप रुद्र के आंखों से आंसू आ रहे हैं, और उस समय स्वरूप दामोदर के मन में ऐसा विचार आता है कि चैतन्य महाप्रभु अब राजा पर खुश हो गए, क्योंकि इसी एक व्यक्ति को मेरे अलावा महाप्रभु दर्शन दे रहे हैं, कि उनको दिखाई पड़ रहा है कि महाप्रभु स्वयं सात रूप में नाच रहे हैं। और फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं, तो सार्वभौम जी उनको कहते हैं कि अभी रथ यात्रा में नृत्य करने के बाद थक जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाएंगे, जो यहाँ से कुछ आगे की जो पिंक बिल्डिंग है बड़ी, वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन की बिल्डिंग है, उसके आगे वहाँ पर जाकर विश्राम करेंगे। वो जगह ऐसी है, उसको जगन्नाथ वल्लभ गार्डन क्यों कहा गया है, क्योंकि जगन्नाथ जी किन्हीं चिन्हे मौसम में वहाँ पर जाते हैं, अपने शरीर पूरा उनका मूर्ति वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पर वो विहार करते हैं, आप उनको खाना पीना खिलाते हैं, नृत्य होता है, गायन होता है, वाद्य बजाते हैं, उनके आनंद के लिए वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु उसी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आराम करने के लिए रथ यात्रा के पश्चात जाएंगे थक कर, तब जो आँखें बंद कर लेट जाएंगे, तब तुम मेरे संग वहाँ पर आना और उनके चरण को मालिश करना, और उस समय राज वस्त्र मत पहनना, एकदम सीधे वस्त्र पहन के आना, कोई सैनिक आगे पीछे, कोई गार्ड्स, कोई होता ना एंटराज, वो किसी को मत लेके जाना, अकेले आना, मैं आपके संग में रहूँगा। तो एकदम सिंपल वस्त्र पहन के, एकदम ऑर्डिनरी मैन बन के राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम के संग जगन्नाथ वल्लभ में प्रवेश करते हैं, और महाप्रभु जी आँख बंद कर लेटे हुए हैं, तो उनको चरणों में आके बिठाते हैं, बोला अभी चरण की सेवा करो। तो चरणों का मसाज करते हुए राजा प्रताप रुद्र गाते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, पूरा जो है गोपी गीत गाते हैं। उसके बाद जयदेव गोस्वामी ने लिखा हुआ गीत गोविंद जो है बड़ा फेमस भजन है, वो बड़ा फेमस काव्य संग्रह है, इसमें केवल राधा कृष्ण गोपियों के संबंधों के बारे में, लीलाओं के बारे में काव्य है। तो महाप्रभु जी आँख बंद करके ये सब सुंदर गीत सुन रहे हैं, गोपी गीत, तो महाप्रभु जी आँखें खोलते हैं और सबसे पहली बार बड़े प्रेम से राजा प्रताप रुद्र को देखते हैं, उनको आलिंगन देते हैं, और इस बार वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में राजा प्रताप रुद्र को मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, अपनी कृपा उनको देते हैं। तो क्या तात्पर्य इसका, भगवान से मिलना आसान काम नहीं है, अपने पद के प्रभाव से, अपने विद्या के प्रभाव से, अपने शक्ति के प्रभाव से, अपने रूप के प्रभाव से, अपने किसी भी ऐश्वर्य के प्रभाव से हम भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान को प्रभावित करना है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, शरीर का भोग नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। राजा प्रताप रुद्र वैसे भक्त थे ही, लेकिन उन्होंने अपने उदाहरण से बता दिया कि राजा और राजा होने पर, भक्त होने पर भी उन्होंने सभी ऐश्वर्य का मन से त्याग कर दिया और नम्र होकर भगवान के चरणों की सेवा की, और उसके पहले क्या किया उन्होंने, भगवान के भक्तों की सेवा की, है ना, सार्वभौम की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार सब भक्तों के रहने की, खाने की और कंफर्ट सुख सुविधा की व्यवस्था की उन्होंने। रामानंद राय को तनख्वाह चालू रखी कि भक्त है भगवान के, उनको आराम से रहना चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता एक ही है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत का और एक महत्वपूर्ण वाक्य है, कोई उनको मिलने आते थे, हरे कृष्णा, लाइट गया, वो लगा दो उसको।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सी अवर रवि सो एक्सपर्ट यू नो इंस्टेंट टेक्नोलॉजी विद फुल कॉग्निशन एंड एंटिसिपेशन एंड प्रोएक्टिवनेस कि लाइट जाएगी तो क्या करना है तुरंत. ऐसे लोगों की वजह से यात्रा सफल होती है, याद रखना. व्हेन दे वर्क हार्ड डे एंड नाइट बिहाइंड द स्क्रीन वी ऑल आर एंजॉयिंग द यात्रा वेरी ब्यूटिफुली. थैंक यू रवि वेरी मच. हरी बोल. तो मैं क्या कह रहा था बताइए, गिव मी द क्लू. ठाकुर भक्त सिद्धांत जी का वाक्य है, उनको जो कोई भक्त मिलने आते थे तो कहते आप कौन हो, हु आर यू. तो इफ ही सेज कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच, अभी ज़रा व्यस्त हूँ, अभी मैं बाद में मिलूँगा. दूसरा व्यक्ति आएगा बोलते आप कौन हो, बोलते मैं कृष्ण के भक्तों का दास हूँ. आइए आइए बैठे बैठे, आपको क्या पूछना है, कुछ आपकी सेवा है, क्या प्रश्न है, पूछ सकते हैं. दे वुड ऑलवेज गिव अ मैसेज टू पीपल टू नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा. एट द मोस्ट वी कैन बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्णा. भगवान के भक्तों का हम दास बन सकते हैं. वो स्थिति जो है वो भगवान के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक है. इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु, हाँ स्वयं कृष्ण जब भक्त बनकर आए तो उनसे ऊपर पर भक्ति कर सकता है. हाउ टू डू भक्ति ही शोड अस. तो चैतन्य महाप्रभु रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने क्या बताया, मेरी पहचान क्या है, ना मैं राजा हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, और ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ. मैं केवल गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास. इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में राजा प्रताप रुद्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान का दिल अगर जीतना है, उनका ध्यान अगर हमारी ओर आकर्षित करना है तो भगवान के भक्तों का दास बनकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी. हाँ तो उसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोग यात्रा में हैं, कोई चढ़ रहे हैं बस के अंदर बड़े बूढ़े, तो हमको पहले उनको जगह देनी चाहिए. अगर वो बूढ़े आते हैं तो उनको अधिक चलना नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनको फ्रंट सीट देना चाहिए. अगर हम बैठे भी हुए हैं तो हमको वहाँ से उठना चाहिए, और बाकी वाले साथियों को और यात्रियों को कैसे आनंद मिले इसका प्रयास करना है. प्रसाद में हो या बस में चढ़ने में हो या प्रसाद सेवा में हो या कहीं आराम करने की स्थिति में हो, मुझे पहले नहीं किसी और को पहले होना चाहिए. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भक्ति का. हमारी भक्ति हमारे हृदय के अंदर कितनी अंदर पहुंच गई है इसका प्रमाण क्या है कि हम कैसे सेवा में रत रहते हैं, आतुर रहते हैं. वी आर रेडी एंड ईगर टू सर्व ऑल्सो टू कम ऑन टाइम इज सर्विस. कम ऑन टाइम इज आई रिस्पेक्ट योर टाइम, इट्स नॉट माई टाइम, यूअर टाइम इज अवर इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई कम ऑन टाइम. ठाकुर भक्त सिद्धांत जी यही भी और करते कहते थे वह अभी भूल गया बोलते बोलते, डू नॉट एक्ट इन सच अ वे दैट यू कैन सी कृष्णा, बट एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा वॉन्ट्स टू सी यू. ये उनका बहुत फेमस वाक्य है कि दुनिया में ऐसी कोशिश मत करना कि मुझे दर्शन कब मिलेगा भगवान, मैं कब देखूंगा उनको, लेकिन ऐसा कार्य करना कि वो आपको देखना पसंद करेंगे. क्योंकि जब वो सोचते हैं कि आपको देखना है तो उनके लिए बड़ा आसान काम है वो, जब हम सोचते हैं कि उनको देखना है तो बड़ा मुश्किल काम हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस समय मिस्टर बराक ओबामा को मिलना इच्छा है आपको, तो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए. हाउ मच डिफिकल्ट इट इज़ टू मीट बराक ओबामा. वो एक दुनिया के एक देश का प्रेसिडेंट है, बट हो सकता है कि इस जन्म के बचे हुए सालों में आप उनको मिल नहीं सकते शायद. लेकिन अगर बराक ओबामा डिसाइड्स ही वॉन्ट्स टू मीट प्रकाश शानबाग, तो वॉट इज डिफिकल्टी फॉर यू. नो डिफिकल्टी एट ऑल, एब्सोल्यूट नो डिफिकल्टी. उस तरह से अगर हम, ये तो बराक ओबामा तो अमेरिका का अध्यक्ष है, नशा भी करता है और सब कुछ पाप भी करता है, एक दिन मर जाएगा मृत्यु के समय के प्रभाव से. मरते लोग का एक साधारण जीव है वो, हमारे तुम्हारी तरह. जैसे हम मलमूत्र विष्ठा डालते हैं बस उस वजह से मलमूत्र निकलता है, इज लाइक अस ओनली. बट बाय द पावर ऑफ टाइम एजुकेशन एंड सम इन्फ्लुएंस ही हैज असेंड टू द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. लेकिन भगवान जो है वो सब विश्व के नियंता है, अखिल ब्रह्मांड नायक, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम, सृष्टि के रचयिता भगवान. उनको मिलने का प्रयास करना बराक ओबामा को मिलने से भी अधिक कठिन काम है. लेकिन अगर वो सोचते हैं कि आपको देखना है,
ऐसा कहा गया है कि चंद्र और सूर्य उनकी आंखें हैं, वो हर समय आपको देखते रहते हैं, उनके हाथ और पैर सब जगह फैले हुए हैं, उनके प्रभाव से और शासन से हम बच नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति ने अगर सोचा कि आपको देखना है तो वो आसानी से आपको देख सकते हैं, ये भी उनकी एक शिक्षा है। और एक बहुत सुंदर रोचक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, आई होप यू आर नॉट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड। जगन्नाथ की कहानियाँ बहुत रोचक हैं। अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 साल के पहले की बात होगी, जगन्नाथ जी के यहाँ अगर जो विद्यापति है ना हमारे, वो कह रहे थे कि उनके घर में चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के समय से जो थे ना विद्यापति, जिन्होंने ब्राह्मण के रूप में जाकर भगवान को खोजा, इज दैट राइट, रिमेंबर द स्टोरी, जगन्नाथ के खोज नीलमाधव के खोज में कौन गए थे, अवंती देश से राजा इंद्रदन की तरफ से विद्यापति जी गए थे, और विद्यापति जी फिर विश्ववासु को मिलते हैं और विश्ववासु के कृपा से योजना से वो नीलमाधव का दर्शन करते ना, तो विद्यापति के ये वंशज हैं सभी जो हमारे साथ में हमारी यात्रा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि विद्यापति जो है वो ब्राह्मण कुल के हैं और साल भर के सेवा में रात्रि भर उनकी सेवा रहती है, एवरी डे एवरी सिंगल नाइट देयर सेवा इज देयर लॉर्ड जगन्नाथ, उनको सुलाना, चंदन वेश, उनका रात्रि का सेवा करना। और उनके घर में रिवाज ऐसा है कि बालक जन्म होने पर उनके घर में 21वें दिन में ही वो बालक को जगन्नाथ के मंदिर में लेके आकर उसको जगन्नाथ के चरणों में रखते हैं और अर्पण कर देते हैं, उनका जीवन जो है जगन्नाथ की सेवा में समर्पित है। उसी तरह से एक परिवार में, इनके बहुत सारे परिवार हैं विद्यापतियों के, तो एक परिवार में एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड़ी उम्र हो गई थी उनकी, बहुत बड़ी उम्र हुई थी उनकी, और बचपन से हरे कृष्णा जस्ट चिल्ड्रन कैन यू टेक अवे प्लीज। सो बचपन से जब से उनका होश संभाला था तब से वो जगन्नाथ की सेवा में थी, और अभी कम से कम 80-85 साल तक उन्होंने भगवान का सेवा किया था, कुछ 90 साल के ऊपर की उनकी उम्र थी, और वो जगन्नाथ जी के विशेष करके सेवा करते थे, जगन्नाथ जी के विग्रह की सेवा करते थे। तो उनको बड़ी बड़ी उम्र में ऐसा विचार मन में आया कि मैंने इतने साल जगन्नाथ का सेवा किया, क्या मेरी सेवा जगन्नाथ स्वीकार कर रहे हैं क्या, इज ही एक्सेप्टिंग माई सर्विस और नॉट, हाउ विल आई नो, आई वॉन्ट टू नो बिफोर आई डाई, कि जो मैंने सेवा किया वो ऐसे ही हवा में गया कि जगन्नाथ ने स्वीकार किया उसे। तो वो जगन्नाथ जी का स्वीकार कर रहे थे, तो भगवान से बोलते हैं मन के अंदर, ये जगन्नाथ जी महाराज अगर आपने मेरी सेवा स्वीकार किया है तो ऐसा कुछ मुझे चमत्कार दिखा दो कि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने मेरी सेवा स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी उनके अंदर हृदय से बोलते हैं उनको कि आज शाम को तुम्हें दर्शन में एक अद्भुत व्यक्ति नजर आएगा, बहुत अद्भुत, तो आपको देख के लगेगा कि अद्भुत है, तब समझ लेना कि मैं आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। तो जब वो सुबह का समय है ना और रात का समय बहुत घंटे हैं, तो उनको एक एक घंटे युग के समान लग रहे हैं, युगा इतम निमेशेन चक्षुषा प्रावृषायत, वेट कर रहे हैं, एक एक क्षण जो है वो युग के समान लंबा लग रहा है उनको। यस कैन वी हैव चिल्ड्रन अवे प्लीज, यू डोंट माइंड, जस्ट रिक्वेस्टिंग लाइक माइंड अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड। तो शाम तक तो उसका पूरा एंग्जाइटी उसके मन में इतनी है कि उसको रहा नहीं जा रहा है, कब शाम होगी और कब मैं उस व्यक्ति का दर्शन करूँगा। तो आखिर में शाम हो जाती है, शाम की सेवा भी हो जाती है, सब का दर्शन खत्म हो जाता है, जनसंख्या भी कम हो जाती है, लेकिन कोई अद्भुत व्यक्ति नहीं आ रहा है उनको, नोबडी इज कमिंग, उसको दुख हो रहा है बहुत, इसका मतलब यह है कि मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार नहीं किया, भगवान नहीं करते उसको, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, इतने साल मैंने सेवा में लगाया कि लेकिन मेरे सेवा में ऐसी भाव में या कुछ कृति में या ऐसी कुछ बाधा रही होगी कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। समय जैसे आगे जा रहा है एक एक क्षण में उसको लग रहा है कि मैं कितना पतित हूँ, कितना मेरा जीवन व्यर्थ है। आप देखते हैं ना जगन्नाथ जी के दर्शन के अंदर तो बैरियर से मन में ना वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, अंदर भी जब जाते हैं टिकट निकाल के तो अंदर भी एक बैरियर है और उसके आगे एक रास्ता है चलने का, फिर आप जाके एकदम भगवान के पास जा सकते हैं। तो उस बैरियर पर वो खड़े हैं, कोई है क्या अद्भुत व्यक्ति देख रहे हैं, और कुछ लोग रहते हैं ना वहाँ पर ऐसे दंडे लेकर सर पे मारते रहते ऐसे प्रसाद के रूप में, ऐसे तो दंडियाँ रहती हैं सब पैसे ऐसे लगाते रहते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो सबको लगा रहे हैं, बैरिकेड भी खड़ा है उधर, सब लोग लगा लगा कर तुलसी लेकर जा रहे हैं और जनसंख्या खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लास्ट में एक काला व्यक्ति आता है, बिल्कुल काले रंग का और आम आदमी से भी दुगनी उसकी कद है, राजा का वेश पहना है उसने, राज वस्त्र पहने हैं, राज अलंकार पहने हैं, बहुत लंबा चौड़ा ऐसे, और वो आता है वहाँ पर प्रणाम करता है। तो ब्राह्मण उसको देखते हैं, विद्यापति जी अरे आ गए, आ गए। तो इनको आनंद से एकदम रोमांच होते हैं, अश्रु बहते आग से, जगन्नाथ आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ी यहाँ पर कथा खत्म होती है, उनको इंटरेस्ट है उन्होंने जानने में कि कौन है ये व्यक्ति। आई वॉन्ट टू मीट हिम, आई वॉन्ट टू फाइंड हिम आउट कि आप कहाँ से आए हो, आपका दर्शन हमने कभी भी नहीं किया आज तक, पहली बार देख रहे हैं, कौन हो आप। इसलिए सब जनता दर्शन करके जा रही है, किसी भी जनता के व्यक्ति को वो नजर नहीं आ रहे, व्यक्ति केवल इस ब्राह्मण को नजर आ रहे हैं। ओनली ब्राह्मण इज सीइंग हिम, नोबडी एल्स इज एबल टू सी हिम। तो ये बैरिकेड क्रॉस करके बाहर जाता है और दर्शन करके प्रणाम करके वो जो व्यक्ति लंबा चौड़ा है वो निकलने लगता है, ही इज गोइंग बैक अगेन। तो इसके पीछे भाग रहे हैं, महाराज जी रुको रुको, महाराज जी रुको रुको। तो महाराज मुड़ के देखते हैं, फिर आगे चलने लगते हैं, महाराज जी रुको रुको, फिर मुड़ के देखते हैं, फिर आगे चलने लगते हैं। उसके पास पहुंचते हैं, महाराज जी आप कौन हो, महाराज जी आप कौन हो। कोई नहीं, मैं तो भक्त हूँ, आता हूँ रोज यहाँ पर दर्शन करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कौन हो बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। नहीं भाई कोई नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, रोज यहाँ पर आता हूँ, आपने देखा नहीं होगा, व्यस्त होते भगवान की सेवा में। नहीं नहीं आपको बताने होगा, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप मुझे बताइए, आप मुझ पर भगवान की हुई विशेष कृपा है, यू आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ द लॉर्ड ऑन मी। अभी उस व्यक्ति को अंतर्धान होना है, लेकिन ही कैन नॉट डू दैट इन फ्रंट ऑफ दिस मैन, उसका दृश्य होना है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कोई ये आदमी चला जाए, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा है उसको, बताइए आपका परिचय क्या है। तो व्यक्ति कहते हैं मैं राजा विभीषण हूँ और मैं लंका से यहाँ पर हो जाता हूँ जगन्नाथ की संध्या आरती का दर्शन करने के लिए। दंडवत करना प्रणाम करते हैं उसको और कहते हैं राजा जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गुणगान करते हैं विभीषण का, क्योंकि तो बड़े संत हैं ना वो, बड़े भक्त हैं भगवान के। कहते महाराज जी आप आज यहाँ पर आए और आपने दर्शन दिया, इसके प्रमाण में आप मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए, गिव मी सम क्या बोलते हैं इसको, सम सिंबल, कुछ चिन्ह दीजिए आप मुझे। तो विभीषण जी अपना कंगन निकाल देते हैं और उसके हाथ में देते हैं और वहीं से अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये जो कंगन है ये अभी भी जगन्नाथपुरी में है और हमने यात्रा के मैनेजमेंट के कोशिश के अंदर बहुत कोशिश की उस जगह में आपको लेके जाने की, लेकिन वो जगह जो है कई साल से बंद पड़ी हुई है, गवर्नमेंट के हिरासत में है और लॉक्ड है, उस पर कई केसेस चल रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में ही वो स्थान है जहाँ पर विभीषण का जो कंगन है वो उपस्थित है, हम उसको यहीं बैठकर प्रणाम करेंगे उस कंगन को। लेकिन भगवान की ऐसी योजना है कि हम इस बार उसको सफलता से नहीं कर सके, लेकिन हमने सोचा है कि उसको जारी रखेंगे हमारे प्रयास को, कभी न कभी शरीर को ख़त्म होने के पहले आपको वहाँ ले जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसी जगन्नाथ से आप कामना करना, हाँ जगन्नाथ जी का लीला बहुत अद्भुत है। एक व्यक्ति यहाँ पर आया जो गणेश जी का बड़ा भक्त था, तो गणेश जी का भक्त था वो, तो वो केवल गणेश जी को मानता था, लेकिन जगन्नाथ जी का ऐसा विशेषता है कि शास्त्र में लिखा है, बाय द वे आपको एक बताना बात भूल गया मैं, कि जगन्नाथ जी के मंदिर के शास्त्र जो है ना एक अलग शास्त्र हैं, विशेष शास्त्र हैं जो स्वयं भगवान ने बताए हुए हैं और केवल जगन्नाथ के मंदिर के अंदर कोठरी में बंद रहते वो, और जो हेड पुजारी है वही उसको पढ़ता है, बाकी लोगों को समझाता है, लेकिन किसी को कॉपी नहीं मिलती है उसकी, ऐसे ग्रंथ उसके अंदर है। तो उस ग्रंथों में लिखा है कुछ कुछ बातें पुजारी बताते हैं तो उनको हम तक पहुंचती है, उसमें लिखा है कि बुद्ध लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको बुद्ध के रूप में देखते हैं जगन्नाथ जी को, और क्रिश्चनों के लिए वो जीसस क्राइस्ट है, और इनके भक्तों के लिए वो ये है, उनके भक्त के लिए वो है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार वो सबके लिए परम भगवान है। तो ये गणेश का भक्त था, इसको पता था कि लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली गणेश भगवान ही है, लेकिन वो ऐसे मन में बोलते हैं भगवान से कि अगर आप वास्तव में ऐसे हो तो मुझे गणेश जी के रूप में दर्शन दो। तो ये कैसा दिन है, रथ यात्रा के पहले दिन, आपको बताया ना मैंने नेत्रोत्सव होता है, बहुत दूर से जगन्नाथ को देखने के लोग आते हैं, उनका मेकअप करके रखते हैं, उनको सजा दे, नेत्रोत्सव के लिए ये भक्त आया था। तो नेत्रोत्सव की शाम में ये भगवान से ऐसे दरख्वास्त करता है कि आप मुझे अपना रूप दिखाओ। तो जब पर्दा बंद होता है भोग के लिए, जब पर्दा खुल जाता है तो जगन्नाथ और बलदेव जी
से सुंड निकली हुई है, बड़े बड़े कान हो गए उनके, वो हाथी वेश में वहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आज भी नेत्रोत्सव के दिन शाम को भगवान को हाथी वेश देते हैं। आपके अब हम आपके मीरा रोड के मंदिर में आप आएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन शाम को, हाँ आपको पता नहीं आप हॉस्पिटल में रहते हो तो क्या आपको मीरा रोड के मंदिर के अंदर क्या क्या लीला चलती है भगवान के, आप आके दर्शन करो। अभी कार्तिक का महीना है, सवेरे और शाम को राधा गिरधारी मंदिर में दीपदान का कार्यक्रम होता है, सब भक्त लोग जाते हैं, आप भी आइए। और रथ यात्रा के पहले शाम को जगन्नाथ अपना मंदिर में राधा गिरधारी मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह भी हैं तो उनका हाथी वेश का दर्शन होता है। हाँ इस तरह से जगन्नाथ जी जो हैं बड़े सुंदर नटवर हैं और सुंदर ललित हैं। ललित का मतलब क्या है, जो बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, जिनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने में वेशभूषा करने में बहुत रुचि है। जगन्नाथ द मेटिकुलस ड्रेसर ऐसा उनका इंग्लिश में लिखा गया, इज अ वेरी एक्सपर्ट इन ड्रेसिंग। उनके ड्रेस का कुछ वर्णन मैं आपको करता हूँ। एक उनका ड्रेस है जो आजकल में यहाँ पर दर्शन हो रहा है उनका, तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसके बारे में। उसका नाम है बड़ो श्रृंगार वेश। रात को वो दर्शन होता है 9 बजे के बाद में 11 बजे तक, और बड़ श्रृंगार का वेश का यह वर्णन दिया है, सॉरी आफ्टर 10 PM एवरी डे रात को बड़ श्रृंगार वेश होता है। और ये श्रृंगार इतना बढ़िया होता है भगवान का कि ऐसे मान्यता है कि राधा रानी और गोपियाँ उस वेश में भगवान को देखने के लिए रात को आती हैं। इसका मतलब आप जो जाएंगे तो आपके संग में अदृश्य अवस्था में राधा रानी और गोपियाँ भी रहेंगी, क्योंकि अपने भगवान को देखने को आती हैं इस श्रृंगार में। तो क्या क्या पहनते हैं उस ड्रेस में, वो एक चीज़ पहनते हैं, उसका नाम है गीत गोविंद खंडुआ। वो क्या होता है, जयदेव गोस्वामी ने राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेममय संबंध के विषय में काव्य लिखा है गीत गोविंद, जो मैंने पहले आपको बताया राजा प्रताप रुद्र ने उसको गाया था। तो वो गीत गोविंद जो है वो 12 फीट लंबे कपड़े पर लिखा होता है, हस्तलिखित गीत गोविंद। वो वस्त्र जो है जगन्नाथ जी अपने सर पर धारण करते हैं, लाल रंग का वस्त्र होता है, उनके मुकुट के नीचे लाल रंग की एक पट्टी होती है, वैसे घुमा फिरा कर उसको बांधते हैं, उसके अंदर गीत गोविंद लिखा रहता है, 12 फीट लंबा होता है। और जब वो दर्शन होता है बड़ो श्रृंगार वेश का, तो बाहर जगन्नाथ के भक्त जो है साथ में बैठकर गीत गोविंद का गायन करते हैं उस दर्शन के समय। चंद्रिका अलंक अलग पट्टी के साथ, मतलब ऐसे उनके भाल प्रदेश के ऊपर एक गोल रहता है पर ऐसे फूलों से बना हुआ, उसको कहते हैं चंद्रिका, वो उनके भाल प्रदेश पर रहती है। फिर एक रहता है तिलक, यहाँ पर ऐसे एक गोल होता है और सामने थोड़ा सा ऐसे उसका आता है, फूलों की लड़ी आती है, आप ठीक से देखिए ध्यान से आपको बना पड़ सकता। तो यहाँ पर भी है ना, देखो ऊपर जो है वो अलग पंटी है, नीचे जो है वो पुष्प तिलक है जो ऐसे नाक से उनके नीचे आ रहा है। फिर एक होता है करपल्लव, करपल्लव यानी उनके हाथ जो है, अभी तो हाथ तो नहीं है उनके ना, ऐसे ही हाथ ऐसे ही है खाली बस, लेकिन उनके फूलों के हाथ और उंगलियाँ बनाते हैं दर्शन में, इनमें शायद नहीं है। ये जो वेश है बाय द वे ये भगवान का सोना वेश है, तो मैंने आपको कहानी बताई थी ना भगवान के, इसमें 1 टन के ऊपर सोना के गहने होते हैं भगवान के ऊपर, ये सोने का मुकुट है, हाथ में सोने के हाथ लगाए, शंख चक्र पद्म गदा सोने के हैं, और उनके चरण कमल सोने के बनाए हुए हैं, उनके जो गदा है सोने की है, सारा जो कंगन है माला है लंबी लंबी मालाएं हैं वो सब सोने की बनी हुई है, गदा है ना नीचे हाथ के सामने, ठीक से देखो। कल आपने कितने लोगों ने गदा देखी अलालनाथ के हाथ में, ऐसे ऐसे हाथ है, ऐसे वो हाथ के नीचे गदा है, और ऐसे हाथ है उसके अंदर कमल है, और ऐसे दो हाथ है उसके अंदर, कौन से हाथ में शंख और कौन से हाथ में, लेफ्ट इज शंख राइट इज चक्र, और हाथ जला कौन सा है उनका, राइट हैंड, जिस हाथ में चक्र है वो हाथ खीर से जला हुआ है। और कानों में उनके पुष्प मकर कुंडल हैं, मतलब फूलों से बने हुए शार्क शेपर्ड इयररिंग्स हैं बड़े श्रृंगार वेश में। फिर पड़क नाम की एक वस्तु है जो 18 इंच लंबी होती है, वो जगन्नाथ के हृदय पर लगाते हो, जगन्नाथ के शरीर पर ऐसे गोल हृदय पर ऐसे लगाते हैं फूलों का बनाया हुआ। और दो वस्तु हैं जिनका नाम है गुणा और झुंपा, जो भगवान के नाक पर लगाते हैं, है यहाँ पर नाक पर श्रृंगार भगवान के नाक पर, एक तिलक है ना बाजू में नाक पर, देखो ऐसा गोल है और लटकी हुई वस्तु है, उसको गुणा और झुंपा कहते हैं। और उसके बाद में पुष्पमाला 12 फीट लंबी, उनके हाथ पर लटका हुई अनेक पुष्पों की माला होती है,
तो आपने देखा होगा ऐसे गोल लगाते हैं हाथ पे ऐसे, वैसे भी है। और तुलसी मुकुट बांबू के छेद से बने हुए, तुलसी से भरा हुआ मुकुट भगवान शाम को पहनते हैं। दर्शन हमने परसों किया रात को। हाँ, आप अगर आप टाइम आपको है शाम को आप जाइए 10 बजे के बाद, तो दर्शन करके आइए, ये सब लिख लीजिए और देखिए भगवान के शरीर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। अगर 100 रुपये टिकट भी लेते हैं तो अंदर जाइए और देख के आइए। ये बड़ा श्रृंगार वेश भगवान का बहुत सुंदर वेश है। 10 से 11 और फिर 11 से बाद में 1 घंटा बंद रहता है और 12 बजे फिर चंदन वेश होता है उनका, चंदन लागी बोलते हैं उसको। फिर चंदन आता रात को और चंदन भगवान को लगाते हैं, उस समय सारा बड़ श्रृंगार वेश निकाल लेते हैं। और वो बड़ श्रृंगार वेश जो है वो निकाल के आपके सामने लेके जाते हैं, आप देख सकते हैं कौन सी पुष्प की माला थी, कौन से करपल्लव थे, कौन से अलग घंटी थी और कौन से करपल्लव और कौन से पुष्प तिलक था, चंद्रिका कौन सी थी, मकर कुंडल, सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसे बड़े बड़े ऐसे ऐसे पकड़ के ले जाते हैं ऐसे हाथ में, सच ए ह्यूज फ्लावर गैदरिंग, ऐसे पकड़ के पुजारी लोग बाहर लेके जाते हैं, फिर भक्तों को देते रहते हैं। ऐसे मैंने आज आपके लिए तुलसी लाया जगन्नाथ का सबको बांटने के लिए, तो आप ले सकते हो। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं, आप लिख सकते हैं अगर कल आपको साफ देखना है तो। गीत गोविंद खंडुआ 12 फीट लंबा, इसमें गीत गोविंद लिखा रहता है, चंद्रिका अलग पंटी भाल प्रदेश यानी कि फोरहेड के ऊपर, पुष्प तिलक उसके नीचे, कर पल्लव हाथों पर उंगलियों के द्वारा बनाया जाता है, मकर कुल्लन कुंडल कानों में शार्क शेपर्ड इयररिंग्स, पड़क यानी कि जगन्नाथ के हृदय पर फूलों का गुच्छा रहता है 18 इंच लंबा, नाक में नथनी की तरह गुणा और झुम्पा रहता है और हाथों में 12 फीट की कई मालाएँ होती हैं, और सर पर बांस से बना हुआ तुलसी से भरा हुआ तुलसी का मुकुट होता है। और जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो यहाँ की कथा अब समाप्त कर देते हैं। अब इसके आगे आपको जहाँ जाना है, जो कार्यक्रम इस प्रकार से हैं कि यहाँ से पहले आप जाएंगे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, जहाँ पर जगन्नाथ जी हमेशा विहार करने के लिए आते हैं रेगुलरली, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के चरणों का सेवा करके प्रताप रुद्र ने आखिर बार चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो प्राप्त की थी गीत गोविंद गाते हुए। उसके आगे आप जाएंगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा नरेंद्र सरोवर, बहुत बड़ा वाटर मतलब तालाब है, इतना बड़ा तालाब है समुद्र की तरह। उसमें हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को जगन्नाथ भगवान का पब्लिक स्नान होता है, साल में एक बार। बाकी सार के हर दिन क्या करते हैं वो, उनके सामने पुजारी नीचे बैठते हैं, वो तो ऊपर है ना ऐसे नीचे जमीन पर बैठते हैं और 3 आईने के देखते हुए आईनों को स्नान कराते हैं, दंत मंजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, मधुपार्क पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं और फिर ऊपर श्रृंगार करते हैं हर दिन का। ये जो पानी का अभिषेक का जो पानी है वो थाली में इकट्ठा करते हैं फिर सबको देते हैं। दातुन जो है वो कपूर लगाकर वही आईने में भगवान को देखते हैं। आईना ऐसा रखा है जगन्नाथ जी यहाँ पर है और पुजारी नीचे बैठे हैं और आईने में भगवान को चेहरा दर्शन कर रहे हैं और उस चेहरे को मंजन कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, सब जल देकर उनको तुलसी अर्पण कर रहे हैं, मधुपार्क का फल फूल सब देते हैं उनको। वो साल भर होता है लेकिन साल में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जिस दिन उनका आविर्भाव हुआ था, जिस दिन वो जो विश्वकर्मा थे वो अंतर्दान हो गए थे और राजा दरवाजा तोड़ के अंदर गए थे, वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, जिस दिन वो एक्चुअली अवतरित हुए थे। उसी दिन आज भी जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती है और वो स्नान यात्रा नरेंद्र सरोवर पर होती है पब्लिक में। उसके बाद उनको बुखार आता है फिर वो अनवसर काल में दर्शन बंद कर देते हैं उसका। उसके आगे आप जाएंगे एकदम एंड में जहाँ ग्रैंड रोड ख़त्म होता है, वहाँ पर क्या है, गुंडीचा मंदिर है। इस गुंडीचा मंदिर में क्या हुआ था, रथ यात्रा के पहले दिन जब यहाँ पर नेत्रोत्सव हो रहा है, भगवान गजवेश में यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम है जिसने वो मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में जाकर क्योंकि कल वहाँ भगवान आने वाले हैं इसलिए उस मंदिर का महामार्जन होता है, साफ सफाई होती है पूरा। उसका बड़ा कथा है लंबा, वो एक और एक प्रवचन का विषय है लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर इस मंदिर को साफ कराया, उसका नाम है गुंडीचा मार्जन। वो बड़ा उत्सव है, वो हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग उस दिन हॉस्पिटल साफ करते हैं। सार क्या है उस कथा का कि भगवान का मंदिर साफ करने से हमारा हृदय भी साफ हो जाता है, इसलिए वन शुड नॉट हेजिटेट टू बिकम हम्बल
and clean the temple of the Lord. Whoever you may be or you are, we should take pains to bow down and sweep the temple of the Lord. क्योंकि ये चेतो दर्पण मार्जन जैसा ही है. भगवान के नाम का जप करके हृदय साफ होता है, वैसे ही भगवान के मंदिर को झाड़ू लगाने से हृदय साफ होता है. तो गुंडीचा मंदिर है, वहाँ पर वही वेदी है. जैसे कंडीशन यहाँ पर है, सिचुएशन वैसे ही वहाँ पर है, सेम सेम. लेकिन उस समय यहाँ पर आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं. इस जगह जाकर आप छू सकते हैं जहाँ पर भगवान खड़े रहते हैं, भगवान को स्थापन करते हैं. सब कुछ वैसे का वैसा ही है, काले रंग के पत्थर हैं. तो सब कुछ साफ करके चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर अगले दिन भगवान के आने की तैयारी की थी. उसके बाद में नरसिंह का मंदिर है. वो नरसिंह का मंदिर वो है कि इंद्रद्युम्न राजा की कथा में मैंने आपको एक पार्ट बताना भूल गया था मैं, कि आकाशवाणी होती है जब वो सुनते हैं कि आपको आगे जाकर भगवान के दर्शन होंगे. लेकिन इसके पहले आप नरसिंह भगवान की पूजा करना. आपको वहाँ पर जंगल में नरसिंह भगवान की मूर्ति मिलेगी, उनको आप स्थापन करके उनकी अच्छी तरह से पूजा करना. उन्हीं के सामने वो 100 अश्वमेध देव यज्ञ करना. तो वो नरसिंह भगवान की मूर्ति जो है उसका मंदिर राजा ने बनवाया विश्वकर्मा के पुत्र की सहायता से. उसका दर्शन भी आप कर सकते हैं. और उसके बिल्कुल पास में इंद्रद्युम्न सरोवर है, जो भी इंद्रद्युम्न राजा ने बनाया था. उस सरोवर में चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, काशी मिश्रा, परमानंद भारती, परमानंद पुरी, ऐसे महान महान भक्त जो हैं वो भगवान के अलग अलग पार्षदों के अवतार हैं. वो सब लोगों ने भगवान के साथ में वहाँ पर भक्त रूप में स्नान किया था. बहुत सुंदर कथाएँ हैं उसके अंदर. उसके अंदर के एक मैंने आपको पहले बता दी थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे ऐसे बच्चे बनकर उस जल में खेलते हैं. तो महाप्रभु जी कहते हैं देखो देखो इतने बड़े पंडित जो है बालक बनकर यहाँ पर जल में खेल रहे हैं. तो ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है ये भी भगवान का ही नहीं लेकिन भगवान के अन्य अनंत भक्तों के चरणामृत का वहाँ पर आपको दर्शन होगा. आप वहाँ पर जाइए, जिसकी जिसकी इच्छा है वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं. तो ये आपको अभी इसके आगे कथा के बाद में वहाँ जाकर लाइन से दर्शन करने हैं. अभी करने हैं या लंच के बाद करने हैं या दोपहर में करने हैं, आपकी इच्छा है. लेकिन मेरे आपको एक विनती है कि एक आखिरी और महत्वपूर्ण कहानी जगन्नाथ जी की बच गई है. आज हमारा आखिरी दिन है, सोचा वो भी सेवा हो जाए. वो ये है कि जगन्नाथ जी ऐसे अकेले अनोखे भगवान हैं जो अपना शरीर बदली करते हैं. कुछ साल के बाद में उनका एक शरीर खत्म होता है और दूसरा बॉडी उनका बनाया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. और फिर 2015 साल में वो इस बार होने वाला है. नवकलेवर बोलते हैं उसको. उस नवकलेवर की पूरी कथा मुझे बताने की इच्छा है. इसलिए 3:30 बजे आप दोबारा एक बार श्वेत गंगा में पधारिए, वटवृक्ष के नीचे. वहाँ पर आपको आधे पौने घंटे में हम कथा बताएंगे नवकलेवर की और भगवान कैसे अद्भुत है वो आपको बताएंगे. जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की. फिर रूप मंजरी यहाँ पर आकर